Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
मार्क कार्नी कई साल तक ट्रूडो दी लिबरल सरकार दे सलाहकार रहे। कार्बन टैक्स कार्नी ने ही ट्रूडो दी मदद की थी। फूड दे उते टैक्सेस लगे, करां दीआं कीमतां दुगनियां होईआं अते कार्बन टैक्स कार्ड सेंटर प्रति लीटर तक पहुंचिया। मार्क कार्नी भी जस्टिन वर्गे ही ने। कार्नी दी जित कैनेडा दी हार है।
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
माजी से हाल, ख्वाब से ताबीर तक, मर्ज़ से तशख़ीस,
ठीक हो जाएंगे आप।
दवा से इलाज तक आप हमारे साथ हैं।
अपनी ज़कात और अतियात से इंडस हॉस्पिटल का साथ दीजिए और लाखों मरीजों का मुफ्त और मियारी इलाज मुमकिन बनाए।
फॉर डोनेशंस विजिट indushospital.ca।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
सैच कुटियोर और नेशनल ज़कात फाउंडेशन पेश करते हैं जश्न चांद रात। GTA में पहली दफा चांद रात सूफी कॉन्सर्ट, जहां हम मनाएंगे चांद रात एक सूफियाना अंदाज के साथ। चांद रात की खुशियां डबल हो जाएंगी। डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चूड़ियां, फूड कोर्ट और बहुत कुछ, सब एक ही जगह, रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा। स्पॉन्सरशिप्स और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें 416-520-1372। मत भूलिए जश्न चांद रात।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा, 6472903773, 6472903773।
मॉम मैं सुनिया करी चोरी होगी।
हाँ बेटा ते पिछले हफ्ते स्ट्रीट विच गोलियां भी चलिया सी।
लिबरल मार्क कार्नी ते जस्टिन ट्रूडो दी कई सालां दी लीडरशिप तो बाद अपनी नेबरहुड दा रूप ही बदल गया है।
जे पुलिस उन्हां नूं फड़दी भी है ओ सेम दे ही छुट जांदे ने। इना सॉफ्ट लिबरल पॉलिसीज नूं रोकना पैणा।
पियर पॉलियफ ते द कंजरवेटिव क्रिमिनल्स नूं जेल भेजणगे, कैच एंड रिलीज बेल पॉलिसीज दा खात्मा करणगे अते साडियां स्ट्रीट्स नूं मुड़ सुरक्षित बनाउणगे। मैं तां उस नूं ही वोट पाऊं।
मैं भी। स्टे सेफ बेटा।
दिस एड इज ब्रॉट यू बाय पियर पॉलियफ एंड कनाडास कॉमन सेंस कंजरवेटिव।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
اس رمضان میں اپنے پیاروں کے ساتھ شاہی افطار بپے انجوائے کریں صرف نان کباب پر آل یو کین ایٹ فیس एपिटाइजर्स में शामिल गर्मा गर्म मंटू, समोसे, पुलानी, सूप, गार्लिक नान, इसके अलावा सिसलिंग शामी कबाब, तंदूरी कबाब, चपली कबाब, ऑथेंटिक कोफ्ता एंड सब्जी कोरमा, खुशबूदार शाही कबूली और जमारूद पुलाव, मीठे में फिरनी और गर्मा गर्म करारी जलेबी। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 5th एवरी इवनिंग एट 5042 सैटेलाइट ड्राइव मिसिसागा एंड 1780 मार्कम रोड स्कार्बरो। अ टेस्ट ऑफ होम सर्व विद लव। Seats are limited. Reserve now at nankebab.com. Nan Kebab, where Ramadan feels like home.
Assalamu alaikum. This is Imam Yusuf Badat. Our elderly deserve care rooted in dignity and faith. Muslim Welfare Canada's long-term care facility will provide halal meals, dementia support, and compassionate nursing, all within an Islamic environment. Become a monthly supporter or make a one-time donation to provide this crucial service. Kindness to parents is an act of perpetual charity. Honor our elders today. You can donate online at mwcanada.org or call 866-754-3111.
ویلکم بیک تمام سامعین جو میں سن رہے ہیں 770 AM پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، آپ کا ہمارا ساتھ ڈائل پر تقریباً آج بھی 7:15 تک رہے گا۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ نیوز کا ہے اور نیوز کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شازیہ ملک صاحبہ، آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ڈبلیو ایس تم نے آج اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے پاکستان کا جھنڈا بننے کی، لیکن تم ناکام رہ گئے ہو کیونکہ تم نے وائٹ کچھ نہیں اس کے ساتھ رکھا ہوا سوائے وائٹ پیپروں کے، خالی وہ اپنے آگے رکھے۔
یہ میچ ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہی، وائٹ جینس پہن بھی لیتا تو نظر نہیں آتی۔
ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے بڑی کوشش کی ہے پیپر رکھنے کی
پاکستان۔
اچھا اچھا اچھا، وہ تمہارا جو لو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ تم کتنے عرصے سے کراچی نہیں گئے ہوئے۔ بھائی
میں تو کراچی ابھی دسمبر میں ہوں کیا۔
اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری صحت پہ کچھ اثر نہیں پڑا؟
بیمار ہو گیا
وہاں پہ۔ ہاں
بیمار ہو گیا
کیونکہ کراچی سے کچھ کھا کے آئے۔
10 سالوں میں کراچی جا کے بیمار ہو گیا۔
اچھا اچھا اچھا، لیکن تم غلط جگہ سے ہو کے آئے تھے اس لیے تم بیمار ہو،
نظر لگ گئی،
ورنہ اگر تم ڈائریکٹلی جاتے کراچی تو پھر تم۔
نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، وہ اب تک نظر کا علاج کرا رہا ہوں۔
آئے آئے، بس تو پھر وہ جو ہے نا گانا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا، وہ اشارے نہیں کرنے تھے نا تم نے، تو تمہاری آنکھیں ٹھیک رہتی، تمہاری
حرکتیں چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھنا پڑتا تھا میری آنکھ ہی جو ہے بند ہو گئی۔
نہیں اگر ان کی چھوٹی ہیں تو تمہیں ان کی نقل مارنے کی کیا ضرورت تھی، تم ایسے
میری بھی آنکھیں چھوٹی ہیں، مجھے میری ماں بھی میری بیگم بھی کہتی تمہاری آنکھیں بہت
نہیں، لیکن بند ایسے کر کے تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔
یہ آپ نے صحیح کہا، اس کو میں نے سوچا نہیں۔
ہاں سوچا کرو نا، سوچا کرو۔ ہاں جیسن کہنی جو ہے نا بس پڑے آ جاندہ ہے، بولن دی دے۔
وہ کہتے ہیں بہت سے کام خاموشی میں کر لینے
چاہیے۔ بالکل،
وہ
کیا کہتے تھے مجد بھائی، چھپڑ کی باتیں،
بس
یہ کچھ باتیں چھپڑ میں رکھا کرو۔
غلطی ہو گئی, غلطی انسان سے ہوتی ہے, خطا کا پتلا.
بالکل بالکل, تو تو زیادہ خطا کا پتلا ہے بڑا.
جو زیادہ
غلطی تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں نا.
ہمارے استاد بھی بڑے ناراض کہتے ہیں جو زیادہ غلطی کرتا ہے نا وہ زیادہ سیکھتا ہے, اس کا مطلب.
اچھا,
جو کبھی غلطی نہ کرے اس کا مطلب اس نے لائف میں جھنڈ کی, اس نے کچھ نہیں کیا اس نے زندگی میں.
دیکھو جی, جو کام کرتا ہے وہی غلطی کرتا ہے, جو کام ہی نہیں کرتا تو وہ غلطی کیا کرے گا. دیکھو یہ تمہارے حق میں میں نے بیان دیا.
تھینک یو.
دیکھو تمہارے کتنے حق میں ہو گئی ہوں.
میں سوچ رہا ہوں آپ کو اس بار افطاری میں کہیں بلا لوں.
یہ رجوی پلازا تمہارے گھر کے بالکل سامنے ہے,
آپ پہنچ جائیں, میں بول دوں گا کسی کو بھی, آپ کو افطاری مل جائے گی.
نکلتے
نام ہی کافی ہے, کہتے
ہیں نام ہی کافی ہے, نکلنے سے پہلے شادی جی پیسے دے دیں.
پیسے نہیں لیں گے آپ ان شاء اللہ.
وہ جیسے تھا نا پنجاب میں ایک لڑکا, وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, اس کو ہر دفعہ کہتے ہیں یار تو افطاری پہ نہیں بلا. کہتا اچھا ٹھیک ہے یار اس سال میں بلاؤں گا. ایک دوست کو فون کیا, کہتا میں نے اپنے گھر میں تمام جو ہے ارینجمنٹس کر لیے, بس تو صرف فروٹ چاٹ لے یار. کہتا چلو ٹھیک ہے, کوئی تو مسئلہ نہیں ہے. دوسرے کو کہا یار میں نے سارے ارینجمنٹ کر لیے, تو صرف پکوڑے لے
لیا.
پھر تیسرے کو فون کیا, کہتا یار میں نے تمام جو ہے نا وہ ارینجمنٹس کر لیے, تو روح افزار کھجورے لے کر آ جا. چوتھے کو فون کیا, کہتا یار میں نے تمام جو ہے نا انتظامات کر لیے ہیں, تو صرف بریانی لے کر آ جا. پانچویں کو فون کیا, کہتا میں نے تمام ارینجمنٹ کر لیے, صرف کباب اور روٹیاں لیا. بس جی وہ پھر جب ادھر آئے سارے تو بیٹھے.
یہاں میں آپ کو ایک نیا دیتا ہوں, آپ رجوی پلازا جائیں, بیسیکلی دو چار ریسٹورینٹس ہیں, ان کے اونرز بھی عامر ہی ہیں.
اچھا,
ان کو پرسنلی جانتا ہوں,
یعنی ان کو بلیک میل کرے تو
ہمارا کلائنٹ بھی ہو گیا, وہ بھی عامر ہے.
اچھا,
تو آپ بس جائیں, بولے جی میں عامر کی کلیگ ہوں.
اچھا,
تو وہ اونر ہی ہے عامر, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
واہ واہ,
کیسا آئیڈیا, کیسا دیا, کریٹو آئیڈیا.
کیا
آپ اسپائس ویلا چلی جائیں, آپ اسپائس ویلا جائیں رجوی پلازا میں, اور وہاں کے بولیں جی وہ میں عامر کو جانتی ہوں.
ہاں,
بس وہ عامر اونر ہے.
اونر ہے, تو اس میں آپ نے $500 کا کھانا کھا لیا, اور سامنے سے عامر چل کے آ گیا, کہتا جی کون ہے آپ.
باپ اکیلی $500 کا کھانا کھا جائیں گے.
ہم تو کھانے پینے والے لوگ ہیں نا, ہم نے تو پھر رج کے کھانا ہے, اوپر سے مفت کا ہے, اوپر سے روزے کے بعد ہم کھا رہے ہیں, تو ہم تو رج کے کھائیں گے.
اس کے لیے پھر آپ جو ہے کسی مسجد کا رخ کریں
یا گردوارا
جائیں, جس تعداد میں آپ کھائیں گے آپ کو وہاں اجر ملے.
اپنا روزہ گھر میں کھول کے گردوارے جائیں
یا مسجد چلی جائے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اچھا,
دو چار لوگوں کے تو میں نام آپ کو دے رہا جن کے اونرز عامر ہیں.
اچھا,
آپ کا کام بن جاتا.
بن جاتا, ہاں ہاں ہاں, چلو ٹھیک ہے. چلو اس پہ بھی غور کریں گے ابھی, ہیں ایسا ہو سکتا ہے.
بہت سے لوگ تو مجھے کال کرتے ہیں یار تیرے ریسٹورینٹ آیا ہوں, میں کہا گڈ یار کھا لیا, ہاں اچھا تھا, زبردست, اوکے فائن,
پیسے دے کے جائیں.
آف کورس پیسے دے دیتے, لیکن وہ
پیسے دے کے جائیں یار,
زبردست چل رہا ہے کام.
واہ,
دیکھو خوشی بانٹنی چاہیے.
دیکھو $7 million جو تم نے یو ایس کمائے تھے, چار پانچ ریسٹورینٹ تو کھولنے تھے.
ایسی تھا,
ایسی تھا,
خوشی بانٹنا. چلے جی خبریں سنا دیں, اس سے پہلے فائر ہو جائیں. تو خبریں سنا,
ٹھیک ہے جی. اوکے جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی سلطان بھائی. آپ کو پتا ہی ہے سلطان بھائی ٹی وی برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں, وہ آپ کو بنڈل ڈیلز دیتے ہیں الیکٹرانکس کے, اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کے پاس جو ہیں وہ چیزیں, اپلائنسز بھی بہت ہوتے ہیں, ڈفرنٹ کلرز میں ہوتے ہیں. تو آپ 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ جا سکتے ہیں, اور ان سے آپ مل سکتے ہیں, چیزیں جو آپ کو چاہیے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیصل چڈا صاحب جو ہیں ولیج ٹیسٹ پہ ہوتے ہیں, دو ریسٹورینٹس ہیں, ایک مسز آگا میں, ایک اوکویل میں, تو آپ کو جدھر بھی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. بڑے زبردست اوتھینٹک ان کے جو ہیں شیفس ہیں, بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, نہ پھٹنے والے کپڑے. عید آنے والی ہے, اگر آپ کو چاہیے اٹالین بول کے, تو آپ جاؤ ادھر اسپیئر اینڈ مکے پہ, یہ آگے ہے یہاں پہ برٹانیا روڈ پہ, تو بہت زبردست نیا اسٹور ہے, وہاں پہ آپ جا کے ان سے لے سکتے ہیں. اور جناب یہ جو ہیں ہمارے راجہ تھے بادشاہ جی, عامر کا نام آپ نے جا کے لینا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کو $1775 بچائیں گے. ہوم اینڈ آٹو انشورنس دیتے ہیں, آل اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, بہت اچھی سویدھائیں دیتے ہیں, تو آپ ان سے سمپرک کریں. پھر آپ نے کھانا پینا کر لیا ہے, آپ نے جو ہے انشورنسیں لے لی ہیں, تو دند اگر پی لے ہیں تو ان کو آپ نے چٹا کرانا ہے جی, تو پھر اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ڈاکٹر نازیہ رحمان کے پاس ڈینٹسٹری آن رجوے پہ. بہت زبردست ڈاکٹر ہیں, زبردست سویدھائیں دیتی ہیں یہ بھی, تو آپ ان کے پاس جاؤ اور بہت سارا سروسز جو ہے اچھی والی دانتوں کے لے سکتے ہیں. اینڈ کوئک ٹرک لیوپ, آپ کو انہیں بڑی دفعہ بتایا ہے, ایک گیٹ سے انٹر ہوئے 15 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا, دوسرے گیٹ سے آپ باہر نکل جاؤ, اور اگر آپ کو آگے یو ایس پی جانا تو آپ جا سکتے ہیں. کوئک ٹرک لیوب جو ہے وہ ٹرکس کا بہت زبردست کام کرتے ہیں, تو آپ ضرور ان کو وزٹ کریں جب بھی کبھی آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ समस्या हो गई है आपके ट्रक की, ठीक है जी। अच्छा जनाब, पहली जो हमारी खबर है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मॉर्क कॉर्नी साहब, वो थे यहां पे इक्वालिट के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि मैं जो कनाडा की है सॉवरेनिटी अटलांटिक में, उसको रीअसर्ट करने के लिए आया हूं। उन्होंने आज जो अनाउंसमेंट की है, तो उन्होंने कहा जी कि ये हम स्ट्रेंथन करेंगे सिक्योरिटी के सारे जो मामलात हैं यहां पे। इनके साथ जो थे आज डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जैनी कॉरिग्नन भी थे, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है यहां से जिस वक्त वो गए हैं तो उनकी मुलाकातें फिर नुनावट के प्रीमियर पीजे अकी गॉड से भी हुई हैं। वहां पर उन्होंने कहा जी कि रेंजर्स जो हैं वो अब कंट्रोल कर रहे हैं जो आर्कटिक में, तो उधर भी उन्होंने फिर कहा कि मैं उनसे भी मुलाकातें करूंगा। ये जो अपना नुनावट का ट्रिप है, ये इन्होंने अब रैप अप कर लिया है। इससे पहले आपको हमने कल बताया था कि पहले फ्रांस गए थे, फिर इंग्लैंड गए थे, एंड आफ्टर ही बिकेम द 24th प्राइम मिनिस्टर, तो ये इनके फर्स्ट ट्रिप्स थे वो जो सारे वो कर रहे थे। और लंदन में और पेरिस में इन्होंने जाहिर है कि पुश किया है क्लोजर ट्रेड एंड सिक्योरिटी टाइज के लिए विद यूरोप, और इनकी मुलाकातें जो थी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन और यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, और फिर उसके बाद जो है कार स्टारमर उनके साथ और किंग चार्ल्स III के साथ जो है हुई थी। अच्छा जनाब, किंग चार्ल्स जो हैं वो जो हैं उनकी मुलाकातें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉरी कॉर्नी साहब की मुलाकातें जो है किंग चार्ल्स के साथ भी हुई थी, और जब इंग्लैंड के अंदर वो थे तो उन्होंने कहा जी कि जो है वो हम इधर जो अपनी ट्रेड वगैरह जो है बढ़ाने के लिए और इनको जो है रिस्पेक्ट भी देने के लिए आए थे। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि ये जो है होम है इनके लिए ना, ब्रिटेन जो है, क्योंकि ये जो है ये बैंक ऑफ कैनेडा के कि जो 319 ईयर हिस्ट्री थी उसमें पहली बार एक नॉन ब्रिट जो था उसको गवर्नर बनाया गया था, और ये जॉब इनके पास जुलाई 2013 से 2020 तक थी। और फिर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी टॉक भी हुई किंग के साथ। किंग के पास जब ये मिलने के लिए बर्मिंघम पैलेस में गए तो उन्होंने वो ऑर्डर ऑफ कैनेडा का लेबल पिन जो था वो लगाया हुआ था। उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी कि कार्नी साहब को कि जी आपकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अब आप है कनाडा के। तो उन्होंने कहा जी कि आज बड़ा मेरे साथ डिजास्टर हुआ, कर्नी साहब ने कहा कि मेरी जो ऑर्डर ऑफ कनाडा की पिन थी वो सुबह ब्रेक कर गई। तो बल्कि किंग ने उनको बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको अपनी क्या दे दूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं थैंक यू। और ये इनकी प्राइवेट टॉक जो थी 30 मिनट तक चलती थी। आपको पता ही है कि इंग्लैंड जो है किंग ऑफ इंग्लैंड जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं कनाडा के। तो यहां पे जब ये किंग से निकल के बाहर निकले तो इससे पहले कि ये जाते उनके पास कार स्टार्मर से मिलने के लिए, तो वहां पे रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि जी ये जो ट्रंप साहब आपके ऊपर इतने ज्यादा लगा रहे हैं टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो क्या आप बोलना चाहते हैं यूरोपियंस को कि वो आपके लिए स्टैंड अप करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कनाडा कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड वी आर स्ट्रांग, वी कैन स्टैंड फॉर आर सेल्व्स, और हमारे जो सॉलिड सॉवरेनिटी है उसको वैलिडेट करने के लिए हमको कोई दूसरा कंट्री जो है वो नहीं चाहिए है। हमारे जो ताल्लुकात है कनाडा और यूके के वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा बहुत सारा हम हिस्ट्री शेयर करते हैं, वैल्यूज शेयर करते हैं, और जो है हम जो है बिल्कुल अगर कोई हमारे साथ बातचीत करना चाहेगा तो हम करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो हिट नहीं करना चाहते हैं उससे ट्रंप साहब को, क्योंकि देर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। क्योंकि आपको पता ही है कि कार्नी साहब ने कहा कि दो इकोनॉमीज जो हैं यूएस और कनाडा की, उनके साइजेस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले कि जिसका कि कोई इन्फ्लुएंस भी ना होएगा यूएस पे, तो उसका फायदा नहीं रहेगा। लेकिन हां, अगर हमारे उस काम से कनेडियंस को जो हार्म आ जाए तो वो हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। और ये जो डॉलर फॉर डॉलर का जो हमने टैरिफ की बात की है उसको हमको बड़े गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी का साइज है इट इज 1/10 ऑफ द यूएस। तो ये उन्होंने बातें की। अच्छा, उसके बाद जनाब कॉर्नी साहब जो हैं उनकी मुलाकातें हुई कायर स्टॉर्मर के साथ, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और जो है स्टॉर्मर साहब ने कहा कि कनाडा जो है हमारा फ्रेंड और एलाय है, और जो है वो उनसे इससे पहले भी पूछा गया था स्टॉर्मर साहब से कि भाई ये जो बार बार ट्रंप साहब जो हैं ये कहते हैं कि एनेक्सेशन की बात करते हैं कनाडा की, कि उसको अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे, तो उसके ऊपर आप कोई बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने बहुत क्लियरली तो नहीं कोई बात कही थी स्टॉर्मर साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि कनाडा की सॉवरेनिटी की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं। तो इसके मुलाकात के बीच में कर्नी साहब ने कहा कि भाई हमारे बीच में शेयर्ड वैल्यूज है और बहुत सारा हिस्ट्री है जो हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है अभी भी, اور جو ہے ہم اس ہسٹری کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کو آگے لے کے ہم اسی طرح چلیں گے, اور ٹریڈ کی اور اس کو انہانس کرنے کی جو ہے انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سب چیزیں آگے لے کے چلیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ بڑا وارمنگ کو گریٹ کیا تھا اسٹارمر صاحب نے. تو انہوں نے کہا جی کہ کینیڈا جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے آن دا بیڈ راک آف تھری پیپل, فرینچ, برٹش اینڈ دا انڈیجنس. اور کینیڈینز جو ہیں وہ فنڈامینٹلی یو ایس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور ہم کبھی بھی ان اینی شیپ اور فارم کبھی بھی یو ایس کا حصہ ہم نہیں بن سکیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم پورے یورپ کے ساتھ کام کریں, اور ہم چاہیں گے کہ یورپ بھی بہت انتھوزیاسٹکلی کینیڈا کے ساتھ کام کرے, کیونکہ ہم جو ہیں کینیڈینز موسٹ یورپین ہیں آف دا نان یورپین کنٹریز. لیکن ہم جو ہے پازیٹو ریلیشنز یو ایس کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہم اچھے ریلیشن, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یو ایس جو ہے سب سے بڑا کینیڈین جو ہے وہ ٹریڈ پارٹنر ہے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی وہاں پہ بھی, تو یہ کافی ان کا ٹرپ جو ہے دونوں کنٹریز کے اندر اچھا گیا. آج جناب بڑے انٹرسٹنگ کچھ پولز آئے ہیں. نیشنل پوسٹ اور لیجر پول نے جو مل کے جو پولز کیے ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ 42% کینیڈینز جو ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ مارک کارنی کے لیے ووٹ کریں گے, اور اونلی 39% جو ہیں وہ پی ایف پالی ایف کے کنزرویٹو کے لیے کریں گے, اور جگمیت سنگھ کا جو این ڈی پی ہے وہ تو ڈسٹنٹ تھرڈ ہے, اس کے پاس صرف 9% سپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو انفیوریبل ریٹنگز ہے اس میں جو ہے 49% کینیڈینز کہتے ہیں کہ پی ایف پالی ایف کے نیگیٹو یعنی کہ انفیوریبل ہمارا ریٹنگ ہے. 39% جو ہے صرف ان کو فیوریبل لائٹ میں دیکھتے ہیں, جبکہ مارک کارنی کو 46% فیوریبلٹی ریٹ ہے. اونلی 28% انفیوریبل ہے, لیکن 28% یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو کارنی صاحب کے بارے میں انف نہیں پتا ہے, اور 12% کہتے ہیں کہ ہم کو انف پی ایف پالی ایف کے بارے میں نہیں پتا ہے, اور 45% کینیڈین سوچتے ہیں کہ کارنی صاحب از بیسٹ سوٹڈ ٹو گرو کینیڈاز اکانومی. 31% فار پالی ایو. 42% کہتے ہیں کہ کارنی بیسٹ پرسن ہے ٹو مینج ٹرمپ. 29% کہتے ہیں پالی ایو ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر 40% لوگ فیور کرتے ہیں کارنی کو. 13% اونلی ٹو پالی ایو. اگر لائف کو کون زیادہ افورڈیبل بنا سکتا ہے اس میں بھی 37% فیور کرتے ہیں کارنی کو. 32% پالی ایو صاحب کو. ریڈیوسنگ گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے اس میں 36% جو ہے وہ فیور کرتے ہیں پالی ایو صاحب کو, اور کارنی صاحب کو 32%. آن گروئنگ کینیڈین آرمڈ فورسز 33% فیور پالی ایو, 26% کارنی. 51% جو اٹلانٹک کینیڈینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ووٹ کریں گے کارنی کے لیے, اور 32% صرف کہتے ہیں کہ پالی ایو کے لیے. 10% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کریں گے این ڈی پی کے لیے. تو مطلب جب سے کارنی صاحب آئے ہیں تو لبرل پارٹی جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ لائف آ گئی ہے, اور وہ آگے آگے جو ہے چل رہے ہیں. اسٹیٹس کینیڈا کی جناب آج خبر آئی ہے, اور اس کے مطابق جو اینوئل ریٹ آف انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسلریٹ کر گیا ہے, شارپلی اوپر چلا گیا ہے 2.6% سے ان فیبروری, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جنوری تک جو فیڈرل ٹیکس بریک ملا ہوا تھا وہ فیبروری کے اینڈ پہ ختم ہو گیا تھا, اور وہ جو اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اتنا زیادہ نہیں رہے گا, تو ایک سائزیبل جمپ اس میں 1.9% کا آیا ہے, جس میں کہ کینیڈینز کو جی ایس ٹی اور ایچ ایس ٹی سے چھوٹ ملی ہوئی تھی, اور کامن گفٹس پہ, ریسٹورانٹ بلز پہ پورے مہینے کے لیے. لیکن فیبروری کا جو فگر آیا تھا وہ تو اس نے شو کیا کہ 2.2% جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آئے گی, جبکہ 2.6% جو ہے وہ آ گئی ہے. تو ریسٹورانٹس کے جو فوڈ کے پرائسز ہیں اس کے اندر بھی اب جو ہے وہ 1.4% اب جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے, اور کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ رائز کر گیا ہے موسٹ آف دا پروونسز کے اندر, لیکن اس نے سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے اونٹاریو کو, نیو برنزوک کو. گیس کے پرائسز بھی 0.6% اوپر چلے گئے تھے جنوری کے اندر, اور اس نے بھی پھر کنٹریبیوٹ کیا یہ جو فیبروری کے فگرز آئے. کینیڈینز نے 18.8% مور اسپینڈ کیا تھا ٹریول کے اوپر لاسٹ منتھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ فیبروری کے اندر ایک لانگ ویکینڈ آ گیا تھا اور لوگ جو تھے وہ یو ایس گئے تھے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرائسز جو ہیں ہٹ ہوئی ہیں. اچھا جناب, اسرائیل جو ہے اس نے پھر سے ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں پیلسٹائن میں, اور 400 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے مار دیا ہے پھر سے, اور تھریٹن کیا ہے یہ کمپلیٹلی کلیپس کرنے کے لیے 2 منتھ کا جو سیز فائر چل رہا تھا اس کے لیے. اسرائیل نے کہا جی کہ جس وقت تک یہ واپس ہم نہیں لائیں گے اور یہ فری نہیں کرے گا حماس 59 آف 250 کیپٹیوز, اس وقت تک ہم بات آگے نہیں چلے گے. فیملیز جو ہیں ہاسٹیجز کے وہ بالکل نہیں نتن یاہو کو چاہتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیل کٹ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے واپس آئیں، لیکن ہم نتنیاہو چاہتے ہیں کہ ایلیمنیٹ کیا جائے کمپلیٹلی حماس کو. اسرائیل جو ہے اس نے کہا جی کہ ہم نے بالکل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم پھر سے سیز فائر توڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ حماس نے ہاسٹیلٹیز کی ہیں اس لیے کیونکہ اس نے ہمارا ہاسٹیجز کو نہیں چھوڑا ہے. اور مین ایشو لیکن جو ہے یہاں پہ کچھ اور ہی ہے، مدعے کچھ اور ہی ہیں. مدعے یہ ہے کہ نتنیاہو صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکل کرائسس فیس کر رہے ہیں، اور ان کا جو 15-year رول ہے وہ بھی خطرے میں ہے. ایک تو ان کے اپنے اوپر بہت سارے مقدمے ہیں، جیسے ہی ان کا رول جائے گا وہ سارے کھل جائیں گے. اس کے علاوہ فار رائٹ فائنانس منسٹر جو ہے بیزلیل سموتریچ، اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وہ کوالیشن توڑ دے گا اگر اس نے سیکنڈ فیز میں انٹر کیا نتنیاہو نے. تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نے تو کہا تھا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ جو مین اپوزیشن اگر نکل گئی کوالیشن سے تو کوالیشن جو ہے وہ ویک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب چونکہ انہوں نے سیز فائر ختم کر دیا ہے، تو ایک اور فار رائٹ جو ان کا پارٹنر تھا اتمر بن گویر، جنہوں نے کہ ان کو چھوڑ دیا تھا جنوری میں، نے وہ پھر سے ان کو آ کے جوائن کیا، جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ جو ہے بہت. تو سارا کھیل جناب کرسی کا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیز فائر نہیں چاہتے ہیں. اب اس کے اوپر ایجپٹ اور قطر جو ہے جی وہ بڑے غصے میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مین دو کنٹریز تھے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے سیز فائر کے اندر. تو ایجپٹ اور قطر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے یہ ملٹری ایکٹیویٹی جو ہے. زیشان ذرا پکچر دکھا دیں قطاری امیر کی ایجپٹ کے سی سی صاحب کے ساتھ. تو یہ جناب انہوں نے بہت زیادہ مائنڈ اس کو کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت زیادہ ہاسٹیلٹیز جو پھر سے بڑھ گئی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے دوسرے کنٹریز نے بھی کنڈیم کیا ہے انکلوڈنگ پاکستان. قطر کے جو فارن منسٹری ہے اس نے کہا جی کہ اسرائیل کی یہ جو ایکسلیٹنگ پالیسی ہے اس کی وجہ سے سارے ریجن کے اندر آگ لگے گی، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے پرابلمز آئیں گے. قطاری پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیشنل ایکشن ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر، ان کو کمپیل کریں کہ یہ بالکل امیڈیٹ سیز فائر کی طرف جائیں، اور یہ جو غازہ سیز فائر ڈیل ہوا تھا اس کے اوپر جو سائن کیا گیا تھا جنوری میں اس کے اوپر بالکل عمل کرے. اور کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ہی تھے یہی جو ہے وہ رینیوڈ سیز فائر کی طرف اب پش کر رہے ہیں زیادہ. ایجپٹ جو ہے اس نے آفیشلز کا جو ایک بیان میڈیا میں آیا کہ وہ کوشش اب کر رہے ہیں یو ایس کو بھی پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ آسک کرے اس کو نتنیاہو کو کہ بھئی یہ بالکل ایکسپٹ کرے سیز فائر اور اس کے ساتھ کنٹینیو رہے. ابھی سنڈے کے دن ہی یعنی کہ آج ٹیوزڈے ہے تو سنڈے کو ہی اسرائیلی ڈیلیگیشن ایک کائرو میں بیٹھا ہوا تھا سیز فائر کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور ایک ٹیم جو تھی دوحہ گئی ہوئی تھی لاسٹ ویک میں. تو فرسٹ سٹیج کا ڈیل جو تھا وہ ایکسپائر کر گیا تھا 1 مارچ کو، اور پھر اس لیے یہ سیکنڈ سٹیج کے لیے یہ ساری اب بات چیت دوحہ اور کائرو میں چل رہی تھی، لیکن اس کو جو ہے بہت برے سے وائلیٹ کر رہا ہے اب اسرائیل. بنگلہ دیش جو ہے جی اس نے ریبیوک کیا ہے یو ایس کی جو انٹیلیجنس ڈائریکٹر آئی ہوئی تھی تلسی گیبرٹ صاحبہ، جو انہوں نے کامنٹس دیے ہیں ریلیجس وائلنس کے اندر بنگلہ دیش میں. انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش نے کہ یہ انفاؤنڈڈ ہیں اور یہ رسک کریں گے سیکٹیرین وائلنس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے. انڈیا جو ہے وہ بہت عرصے سے بنگلہ دیش کو ایکیوز کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ہندو مائنورٹی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ بالکل پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا. بنگلہ دیش نے یہ سارے چارجز ڈینائی کیے تھے. گیبرٹ نے ایک انٹرویو میں جو وہ این ڈی ٹی وی کو دے رہے تھے ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو پرزیکیوشن وہاں پہ اور کلنگ اور ابیوز آف ریلیجس مائنورٹیز چل رہا ہے، خاص طور پہ جو میجر ایریا آف کنسرن فار یو ایس گورنمنٹ ہے وہ اسلامسٹ ایکسٹریمزم ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے بنگلہ دیش کے گورنمنٹ کے ساتھ ریز بھی کیا ہے. بنگلہ دیش کے گورنمنٹ نے کہا کہ یہ بالکل مس لیڈنگ جو ہے کامنٹس ہیں اور یہ ہمارے کنٹری کا امیج اور ریپیوٹیشن کو خراب کرتے ہیں. ہندوز جو ہیں دے میک اباؤٹ 8% آف بنگلہ دیش 170 million پیپل، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ مائنورٹیز کو پورا آزادی ہے اور یہ ان کے کامنٹس بالکل ٹھیک نہیں ہیں. ٹرمپ صاحب نے آج کہا ہے جی کہ ہم اب جو ان کا وعدہ بھی تھا کہ 1963 کا جو اسیسینیشن تھا پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کا وہ سارے کے سارے فائلز جو ہے ہم وداؤٹ ریڈیکشن یعنی کہ کچھ بھی اس میں سے چھپائے یا رکھے یا کاٹے پیٹے بجائے بالکل پورے کا پورا جو ہے ہم شائع کر دیں گے پبلک میں جو کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کیمپین میں. آج رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے ایٹ جان ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس ان واشنگٹن جس میں کہ انہوں نے کہا جی 80,000 1000 फाइल्स जो अब बाकी के रह गए हैं, कुछ तो सामने आए थे, उन सबको हम डी क्लासीफाई कर रहे हैं और हमको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा और इसको अब देखने पड़ेंगे इंटरेस्ट की सॉरी इसको जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे वो हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। जो लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं वो कहते हैं ऐसा भी कोई अर्थ शेकिंग कोई रेवलेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उसका चूंकि इंटरेस्ट बहुत है क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को लोग पसंद बहुत करते थे, तो उसको कैसे असैसिनेट किया उसके हकीकत वो जरूर जानने चाहेंगे, तो अब ये डी क्लासीफाई किए जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट किया है ट्रंप साहब ने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और अटॉर्नी जनरल को कि आप एक प्लान बनाओ, पहले कहा था इनको, ताकि ये जो है रिकॉर्ड्स 1968 के जितने भी असैसिनेशन थे जैसे कि सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी का और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, उसके लिए भी डीक्लासीफाई किया जाए। इन्होंने जब ये ऑर्डर साइन किया था तो वो पेन जिसको उन्होंने तोड़ दिया था उसी जगह पे, वो उन्होंने कहा था अपने एड को कि ये जाके रॉबर्ट कैनेडी को जूनियर को दो जो कि जॉन एफ कैनेडी के नेफ्यू थे और रॉबर्ट कैनेडी के बेटे थे, क्योंकि जो है ये रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ये बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि एक लोन गनमैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उसके अंकल को, जो कि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उसको मारने में जो है वो शामिल है। उसको लगता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी और दुनिया भी और भी समझती है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे तो उनको मारने का कुछ साजिश हो सकता है इसके अंदर, तो वही चीजें जो है वो ये जानना चाहते हैं। आपको पता ही है कि रॉबर्ट जूनियर कैनेडी जो है कैनेडी जूनियर जो है उनको ट्रंप साहब ने अभी लगाया है जो है वो वैक्सीनेशन का ना जो है वो यानी कि हेल्थ का हेड बनाया है, वैक्सीनेशन के काफी ये खिलाफ थे फिर भी इनको जो है वो हेड बनाया है, तो वो काफी क्लोज है ट्रंप साहब से। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जनाब वो ये है कि ट्रंप साहब ने फाइनली पुतिन साहब से फिर से बात किया है और इन्होंने मीडिएट किया है ये पूरा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के यूक्रेन का वॉर जो है उसको खत्म किया जाए। ये मीटिंग जो है बहुत ज्यादा लंबी चली, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस सुबह 10 बजे ये शुरू हो गई थी लेकिन चलती चली जा रही थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि पुतिन ने अब एग्री किया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 30 डेज। सो दिस इज अ बिग 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 न्यूज, पुतिन हैज एग्रीड एक्चुअली टू सस्पेंड स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 30 डेज और इसके अलावा टेक्निकल टॉक्स जो हैं उनको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा मैरीटाइम सीज फायर के लिए इन ब्लैक सी, जो कि फुल सीज फायर की तरफ फिर जाएगी और लास्टिंग पीस आएगा। ये टॉक्स जो थे अब ये शुरू होंगे मिडल ईस्ट के अंदर, तो इसलिए रशिया जो है वो अंडर दिस डील यूक्रेन के साथ एक्सचेंज करेगा 175 प्रिजनर्स ऑन मार्च 19। रशिया इसके अलावा 23 सिवियरली वूंडेड यूक्रेन सर्विसमैन जो हैं जो कि जिनको ट्रीटमेंट अभी रशिया में दिया जा रहा है उनकी मेडिकल फैसिलिटी पे, उसको भी रिलीज करेगा। बोथ टीम्स बोथ जो कंट्रीज हैं वो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाएंगे जो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे इन केस जो है ये सारा सिस्टम डिटेल ना हो जाए। पुतिन ने लेकिन ये भी कंडीशन दिया है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल कंप्लीट एस्केलेशन को रोकने के लिए जो है वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन करना चाहिए, लेकिन वो उसी तरह आएगा कि अगर यूरोपियन कंट्रीज जो है कोई भी ये फॉरेन मिलिट्री एड जो दे रहे हैं यूक्रेन को उसको रोकेंगे और कोई भी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो कर रहे हैं कीव के साथ तो वो भी नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर ये फिर उन्होंने कहा जी कि मैं ये सब मानूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मैंने सोचा कि ये जरूर जरा करनी चाहिए बाकी खबरों के साथ। फ्रेंच पॉलिटिशियन जो है राफेल ग्लक्समैन, उन्होंने यूएस को कहा है कि हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है हमको वापस दो। उन्होंने कहा जी क्योंकि ट्रंप साहब और उसका गवर्नमेंट जो है वो अब टायरेंट्स के साइड के ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए हमको ये वापस चाहिए। ये जो स्टैचू था ये गिफ्ट था फ्रांस की तरफ से टू ऑनर द अलायंस बिटवीन द टू कंट्रीज और इसको अनवेल किया था 1886 में, लेकिन अब वो कह रहे हैं ग्लक्समैन के एंटी इमिग्रेंट इनका स्टैंस है, बहुत ही लेस देन फ्रेंडली इंटरनेशनल इनका टाइज है, तो ये मैच नहीं करता है स्पिरिट ऑफ मॉन्यूमेंट को, ये हमारी तरफ से गिफ्ट था लेकिन अब हमें लग रहा है कि ट्रंप गवर्नमेंट इसको बहुत नफरत करती है, तो शी विल बी हैप्पी इन पेरिस। तो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी जो है प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, उनसे भी प्रेस ब्रीफिंग में पूछा गया कि क्या ट्रंप साहब ये 225 टन का जो स्टैचू है ये वापस भेजेंगे या नहीं, तो अब जाहिर है कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा इसका, जाहिर है कि कैसे इसको उतारेंगे और भेजेंगे, लेकिन बहरहाल जी उन्होंने ग्लक्समैन साहब ने ये कहा जी हमें वापस करो। पाकिस्तान के अंदर इन कैमरा मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि कहा गया है कि टेररिस्ट जो हैं उनको उनके साथ जो है सख्ती से पेश आया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा जी कि वी विल डील विद देम विद आयरन हैंड। ये हाई लेवल मीटिंग जो है इसको कन्वीन किया था नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अमंगस्ट राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। और फिर अभी जो ग्लोबल इंडेक्स भी आया था उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था इन इंक्रीज इन टेररिस्ट अटैक्स। ये जो मीटिंग थी इसको अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ फोर प्रोविंसेस और बहुत से टॉप ऑफिशियल्स ने। लेकिन हैरत की बात है कि इंटीरियर मिनिस्टर जिसका काम है ये इंटीरियर के अंदर अमन अमान रखना मोहसिन नकवी, वो इधर नहीं थे। एंड ऑब्वियस ये है कि पहले तो पीटीआई ने कहा कि हम इसको हडल को अटेंड करेंगे, फिर वो उन्होंने आज कहा कि हम नहीं करेंगे। इसीलिए नेशनल असेंबली के जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब थे वो भी नहीं थे। राणा सनाउल्लाह और मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसने आज ब्रीफ किया सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। ये क्लोज डोर मीटिंग था और इसमें जो है बातचीत डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि जो स्टैट्स आए हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 का रिपोर्ट उसके ऊपर भी बात हुई होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस मेनस को खत्म करेंगे। लेकिन नेशनल असेंबली के स्पीकर जो है याद सादिक उन्होंने कहा जी कि पीटीआई और उमर का इसमें ना आना बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की मीटिंग थी जो नेशनल सिक्योरिटी पे थी और ये पार्लियामेंट्री जो इनके डिसीजन होते हैं उनके ये खिलाफ है इनका एटीट्यूड। पीटीआई ने यह स्किप इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमको इजाजत जो है इमरान खान से चाहिए और हमारी जो है वो मुलाकात उनसे कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज इस्लामाबाद में हुई उसमें पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि क्योंकि पीटीआई का कोई इसलिए नहीं आया इसमें कि इमरान खान से हमको मुलाकातें और उसकी डायरेक्शन नहीं लेने दी गई है एक्सेप्ट फॉर केपी चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो एज केपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके तौर पर वो अटेंड कर रहे थे। इसके अलावा बलोच नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के चीफ जो है सरदार अख्तर मैंगल, मजलिस वहादत मुस्लिम के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी अटेंड नहीं किया। टीटीएपी के चीफ महमूद खान अचकजई ने बहुत अफसोस किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत ही डेंजरस फेज से गुजर रहा है और सिक्योरिटी के बड़े खतरनाक मामले हैं। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ साहिबजादा हामिद रजा ने भी कहा कि सबसे पहले तो हमने ही बोला था कि ये इन कैमरा सेशन होना चाहिए पार्टीज का और हमने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके नाम भी दिए थे, लेकिन चूंकि पीटीआई के जो फाउंडर है इमरान खान वो सबसे बड़ा लीडर है और उसको अगर आप नहीं बिठाएंगे तो फिर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं चल सकता, तो उसको चूंकि आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया इसलिए हम भी इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे। अब जब ये मीटिंग हुई हो रही थी तो उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब से भी पूछा गया कि भाई आप बताइए इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो सॉफ्ट स्टेट का अप्रोच जो था अभी तक ले रहा था और जो है इसीलिए इतने सारे इनोसेंट लाइव्स जो है उसका लॉस आपको देखने में मिल रहा है क्योंकि टेररिज्म मुल्क में बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा जी कि बेटर गवर्नेंस करना पड़ेगा और आपको अपना स्टैंस भी सख्त करना पड़ेगा। कब तक आप आर्म्ड फोर्सेस को बुलाते रहेंगे आपके ये जो गवर्नेंस के गैप्स हैं इनको फिल करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे अपने खुद के लड़के जो हैं उनकी भी डेथ होती है। तो यानी कि उनका कहने का मतलब था कि सिविलियन गवर्नमेंट को थोड़ा भी ओनस लेना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा। ये जो इन कैमरा मीटिंग चल रही थी वो उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम भी रहेंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी सिक्योरिटी का ख्याल किया जाए और जो भी एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर में उनको यूनाइटेड होकर मुल्क के स्टेबिलिटी के लिए और सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ेगा, अपने लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी। पाकिस्तान को सेफ गार्ड करना जो है वो बिल्कुल उसके लिए एक यूनिफाइड नैरेटिव होना चाहिए और आपको राइज करना चाहिए अबव योर पॉलिटिकल एंड पर्सनल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा जी मैं बिलीव करता हूं कि जो लोग पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं ये टेररिस्ट, उनको आज के दिन बहुत ही क्लियर मैसेज गया होगा कि हम आपको डिफीट करेंगे और आपके फैसिलिटेटर्स को भी पकड़ेंगे। तो ये बातें जनाब उन्होंने की। पाकिस्तान ने आज जनाब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बात करते हुए कहा है कि एक एक्शन लेना चाहिए, ये जो टेररिज्म जो एमनेट भी हो रहा है और ऑपरेट भी हो रहा है अफगानिस्तान की सॉइल से। ये बातें आज पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर मुनीर अकरम ने एक बार फिर से कही है। उन्होंने कहा जब से तालिबान का गवर्नमेंट आई है उस वक्त से ये सारे शुरू हो गए क्योंकि ये इफेक्टिवली दाइश को और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि टीटीपी बीएलए और उनकी मजीद ब्रिगेड उसको एलिमिनेट करने में बिल्कुल जो है वो नहीं कामयाब हुए हैं और ये लोग जो है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। अभी जो बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए का कि मजीद ब्रिगेड का जो अटैक लास्ट वीक में था उसमें हजारों सैकड़ों ही लोगों को हॉस्टेज बनाया था और 25 इनोसेंट जो सिविलियंस है उसको मारा गया था। ये अटैकर्स जो है देखा जा रहा था कि कंटिन्यूसली उनका कॉन्टैक्ट जो था हैंडलर्स जो है इसके अफगानिस्तान में उनके साथ थे और जिन्होंने ये अटैक प्लान किया था और जो उनको डायरेक्शंस दे रहे थे। तो हमारे पास एविडेंस भी है कि ये अटैक कहां से जो है वो इनिशिएट हुआ है और उसको फंड भी कौन कर रहा है, जो हमारा प्राइमरी एडवर्सरी है, यानी कि प्राइमरी एडवर्सरी उन्होंने बोल दिया, इंडिया को इंडिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वो हमारा प्राइमरी एडवर्सरी है और वो अफगान प्रॉक्सीज के थ्रू जो है हमारे पे अटैक्स कर रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और डिसरप्ट करना चाहता है पाकिस्तान का कोऑपरेशन विद चाइना और सी पैक को रोकना चाहता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने गुहार लगाई कि भाई इसको आप अभी देखो और इनको जो है पकड़ो और इनको सजा दो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है अब 4 डे विजिट के लिए सऊदी में जाएंगे फ्रॉम मार्च 19 to 22 टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज। पता नहीं अभी 75 ईयर्स तो हो गए, अभी और कितना स्ट्रेंथन करना है बायलेटरल टाइज। बहरहाल जी, बायलेटरल टाइज को करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन और प्रोमोट इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आज बोला है जी कि प्राइम मिनिस्टर का मुलाकात जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस के साथ भी होगा और ये सारे सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और ये जो है फ्यू डेज मक्का और मदीना में भी रहेंगे, फिर जद्दा में जाके इनकी मुलाकातें ये करेंगे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ। इन अक्टूबर 2024 में भी पीएम ने विजिट किया था सऊदी अरेबिया का फॉर द 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कि कराया था किंग सलमान ने। और उन्होंने कहा जी कि दोनों के बीच में अभी कुछ अर्सा पहले भी जो है एक डेलीगेशन जो आया था इस्लामाबाद में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फली, तो तब भी कोई जो बहुत सारे एमओयूज जो थे वो साइन हुए थे वर्थ $2 बिलियन। तो काफी जो है वो यानी मेल जोल तालमेल काफी चल रहा है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने जनाब यूएस को कहा है कि वो सिक्स फॉर जस्टिस जो सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसको ये बोलते हैं उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वो लिस्ट में डाले। हालांकि यूएस ने कहा था कि उसका जो हेड है गुरपतवंत सिंह पन्नू उसको मारने का कोशिश जो है वो इंडिया के फॉर्मर इंडियन स्पाई एजेंसी के ऑफिसर ने करने की कोशिश की थी नवंबर 2023 में, जबकि ये पूरा उन्होंने फिर जो है ये काम जो है फॉइल किया था इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इंडिया ने डिनाई किया था कि हमारा कुछ रिलेशनशिप है इसके अंदर। ये इशू उस वक्त आया जिस वक्त तुलसी गैबर्ट की मुलाकातें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ हो रही थी और 2007 में सिक्स फॉर जस्टिस जो उसको बनाया गया था और अब वो सारी दुनिया में रेफरेंडम्स कराता है फॉर खालिस्तान। तो इसको लेबल किया था अनलॉफुल एसोसिएशन बाय इंडिया इन 2019 में, क्योंकि वो कहते हैं इसके बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज है और उन्होंने लिस्ट किया था पन्नू को एज टेररिस्ट इंडिविजुअल टेररिस्ट इन 2020। यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा जी हम बिल्कुल इस बात पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं बिसाइड्स के जो एक प्रेस रिलीज आई है इन दोनों के बीच में मुलाकात के बाद जिसमें के कहा गया है कि दोनों कंट्रीज जो है सिक्योरिटी टाइज जो है उसको मजबूत करेंगे। इसके अंदर कोई भी मेंशन जो है सिक्स फॉर जस्टिस के लिए नहीं है, लेकिन गैबिट के ऑफिस को भी जब मीडिया ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे कि हम आपको कल बता रहे थे कि तुलसी गैबिट ने कहा था कि टेररिज्म जो है इस्लामिक टेररिस्ट एटलीस्ट जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। और जनाब दंगे हो गए हैं शुरू नागपुर में और उसकी वजह यह है कि विकी कौशल का जो मूवी छाविया आया था जिसमें कि उन्होंने लाइफ दिखाया है संभाजी शिवाजी महाराज का, तो उसकी वजह से काफी पॉलिटिकल और कम्युनल जो स्टॉर्म है वो अब आ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये फिल्म जो है इसकी वजह से ये इतना वायलेंस नागपुर के अंदर आया है क्योंकि लोग जो है वो मुगल एम्परर औरंगजेब के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। ये बहुत ही वायलेंट क्लैशेस जो है अब चल रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि ये औरंगजेब का मकबरा ही भी यहां से तोड़ो। विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू राइट विंग ग्रुप है उसने तो औरंगजेब का एक एफिजी को भी जलाया और उसके टूम के ऊपर भी आग लगाई। उन्होंने डिमांड किया है कि ये औरंगाबाद से जो है इसका टूम रिमूव किया जाए। विश्व हिंदू परिषद जो है उसने अलेज किया कि ये जो उसके बारे में अलेज किया जा रहा है कि उसने शायद अलेजली एक रिलीजियस बुक जो है मुसलमानों की वो भी शायद जलाई है। तो फतनाविज साहब ने कहा कि ये सारा कुछ मुझे प्री प्लान और कॉन्स्परेसी लग रही है, क्योंकि कुछ घर और कुछ गाड़ियां भी जलाए हैं और कुछ उनके बिजनेसेस जो हैं मॉब ने उनको भी टारगेट किया है। तो उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल थोड़ा रेस्ट्रेंट लोग शो करें, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस जो भी हो गई है वो तो गुजर गया, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में आप अपना सोशल हार्मनी खराब मत करो। ये जो रॉयट्स शुरू हुए हैं इसके अंदर 15 पुलिसमैन जो हैं वो भी बहुत गंभीर अंदाज में जख्मी हुए हैं। और फतनाविज साहब ने कहा जी कि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और मैंने पुलिस कमिश्नर को भी बोला है कि जो भी आपसे बन पड़े आप वो स्टेप्स उठाओ और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो एट एनी कॉस्ट, और लोगों को जो ये मिसक्रिएंट्स हैं इनको सजा दो। इसके अलावा इनडेफिनेट कर्फ्यू जो है वो पार्ट्स ऑफ सिटी में यहां पर नागपुर में लगा दिया गया है। और अभी फरवरी में भी जो फैंस से जब ये फिल्म आई थी तो उन्होंने बहुत सारा ब्लैक पेंट कर दिया था जितने भी साइन बोर्ड्स थे दिल्ली के हुमायूं और अकबर रोड्स के ऊपर, और वहां पे शिवाजी का पिक्चर जो था वो चिपका दिया था जिसको के बाद में रिमूव किया गया। लेकिन गुजरात के अंदर तो एक मूवी देखते हुए एक हिंदू ने स्क्रीन ही फाड़ दी और उसने कहा कि मैं तो ये फिल्म ही नहीं चलने दूंगा। तो मतलब क्रेजीनेस हैज नो एंड। अभी इसको क्या बोलेंगे, इस एक्ट को क्या बोलेंगे, ये जो मुसलमानों के जो बिजनेसेस जो हैं उनको जलाया गया, उनकी गाड़ियां जलाई गई, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, औरंगजेब का जो टूम जो है उसको तोड़ा गया। ये अब टेररिज्म नहीं है, ये टेररिज्म के अंडर नहीं आएगी। तो मिस तुलसी गैबर्ट साहिबा अगर आप सुन रहे हो तो आप इनकी तरफ भी जरा देखो, ये चीजों की तरफ भी देखो, ये देखो जरा क्या चल रहा है, ये कॉम्यूनल जो राइट्स इतने नागपुर में चल रहे हैं उसकी तरफ भी देखो, और मणिपुर में भी आप देख लो उधर भी कॉम्यूनल राइट्स हुए थे वो भी आप जरा देखो। तो ये टेररिज्म नहीं है कि आपके ख्याल में, तो आप थोड़ा गौर करें इस पे भी। आज फिल्म मेकर शेखर कपूर जो है बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए। आपको पता ही है कि 1994 में उन्होंने अपना फिल्म एक बनाया था द बैंडेड क्वीन। द बैंडेड क्वीन को अब ओटीटी के ऊपर लगाया गया है और शेखर कपूर ने कहा जी कि इसको तो इतना ज्यादा काट दिया है कि ये अब बियॉन्ड रिकग्निशन है वो फिल्म जो कि मैंने बनाई थी, और मेरे से इन्होंने इजाजत भी नहीं लिया, मेरे कंसेंट के बगैर इन्होंने इतना ज्यादा काट दिया। उन्होंने कहा मैं वंडर करता हूं कि जो फिल्म डायरेक्टर्स क्रिस्टोफर नोलन की तरह के हैं उनका कभी आप ओटीटी पे मूवी लगाओगे तो क्या आप डेयर करोगे उसका मूवी ऐसे काटने के लिए उसके कंसेंट के बगैर जैसा आपने मेरे मूवी के साथ किया है। तो जी बहुत भड़के हुए थे। जॉन अब्राहम जो कि आजकल अपनी फिल्म द डिप्लोमैट जो है उसकी रिलीज को जो है कि से पहले उसकी जो प्रमोशंस कर रहे हैं उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया कि अपना कुछ इंटरेस्टिंग अब वाकया बताएं उनको। उन्होंने कहा जी कि मुझे इंडस्ट्री में 22 इयर्स हो गया है, लेकिन एक दफा ऐसे हुआ था कि मेरी जो एक फिल्म आई थी एतवार उसका मुहूर्त था और फर्स्ट शॉट था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि मैं जो है मोटरसाइकिल पे आया था तो गेट पे मुझे उन्होंने रोक लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, तो मैंने उनको बताया कि ये जो मूवी एतबार है ये मेरी ही है और इसी का मुहूर्त है और इसी के फर्स्ट शॉट के मुहूर्त के लिए मैं आया हूं। तो बहरहाल वो कहते जी काफी लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने फिर मुझे फाइनली अंदर जाने दिया, और अंदर फिर जो है बिग बी और ऋतिक खड़े हुए थे तो उन्होंने भी फिर मुझे हाथ से इशारे किए अंदर आओ अंदर आओ, तो फिर मैं गया। और आज उन्होंने और भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन किया, उन्होंने कहा जी ऋतिक रोशन मेरा क्लास फेलो था। आईपीएल 2025 का जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है ईडन गार्डन्स इन कोलकाता के अंदर जनाब, वो इट्स गोइंग टू बी हेविली बॉलीवुड अफेयर, क्योंकि उसको अटेंड करेंगे शाहरुख खान, सलमान खान, विकी कौशल, संजय दत्त, श्रिया घोषाल, दिशा पाटनी, करण औजला, अरिजीत सिंह, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन और भी बहुत सारे। इसके अलावा वन रिपब्लिक जो कि यूएस पॉप बैंड है वो भी इस मौके पे परफॉर्म करेगा। और जनाब आमिर साहब जो कह रहे थे पाकिस्तान बड़ी हॉस्पिटेबल नेशन है, उन्होंने और हॉस्पिटैलिटी दिखाई। दूसरा मैच जो कल था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में वो भी दूसरा T20 भी 5 विकेटों से पाकिस्तान हार गया, और न्यूजीलैंड ने बहुत ही एफर्टलेसली चेज किया 136 रन का टारगेट एट डूनडीन यूनिवर्सिटी ओवल में। इनके जो कैप्टन है पाकिस्तान के सलमान आगा उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया, 46 रन बनाए। पाकिस्तान ने 135 फॉर 9 बनाया और जो है 15 ओवर्स में, क्योंकि जो है गेम बहुत ही डिले से शुरू हुई बिकॉज ऑफ द रेन तो मैच को रिड्यूस किया गया था। न्यूजीलैंड अब 2-0 से की लीड से चल रहा है। ओपनर हसन नवाज आज कल फिर दूसरी दफा जो है जो बगैर कुछ भी स्कोर किए हुए आउट हो गए। पाकिस्तान ने की जो हालत थी 19 for 2 थे अगेन इन फोर्थ ओवर। शादाब खान ने फिर बनाए 26 of 14 बॉल्स, शाहीन शाह अफरीदी ने 22 of 14 बॉल्स, सीमर जो थे न्यूजीलैंड के बेन सियर्स और ऑलराउंडर जिमी नीशम, उन्होंने दो दो जो है वो विकेट्स लिए। इनको कॉल किया गया था इन प्लेस ऑफ टिम रॉबिन्सन एंड काइली जेमिसन। सीमर हैरिस रोफ जो है उनको सिर्फ एक चेंज थी जो कल के मैच की थी, उनको रिप्लेस किया था लेग स्पिनर अबरार अहमद की जगह पे। बांग्लादेश मेंस क्रिकेट टीम जो है जनाब वो पाकिस्तान को टूर कर सकती है फॉर व्हाइट बॉल सीरीज टू प्ले 3 ओडीआईज एंड 3 टी20s इन मे। और आखिरी बार जब ये उन्होंने विजिट किया था तो बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन किया था 2-0 से पाकिस्तान में, तो ये अब इनका दूसरा विजिट रहेगा। सीरीज जो थी उसने तो होना था पीएसएल 10 के बाद जो कि हो रही है अप्रैल 11 से मई 18 में, लेकिन चूंकि जो ये फ्यूचर दिस वाज पार्ट ऑफ फ्यूचर्स टूअर्स प्रोग्राम, लेकिन ये इसको पोस्टपोन किया गया था क्योंकि दोनों ही टीम का जो स्केड्यूल था बहुत ही ज्यादा बिजी था। तो अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन फारूक अहमद जो आए हुए थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसके साथ पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बातचीत किया और उन्होंने अग्री किया है कि जैसे ही पीएसएल खत्म होगा तो मई में ये सीरीज जो है खेलेंगे। और जनाब एक अच्छी खबर भी सुना दी है, पाकिस्तान के किक बॉक्सर जो है आगा कलीम 24 इयर्स उनकी एज है, क्वेटा से हैं, उन्होंने विन किया है जनाब सिल्वर मेडल इन 51 किलोग्राम कैटेगरी एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुए थाई एसोसिएशन वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप इन बैंकॉक में। इसमें 40 कंट्रीज तकरीबन पार्टिसिपेट करते हैं और कलीम जो है उसने बड़ा जबरदस्त रेजिलियंस दिखाते हुए वो आगे गया, लेकिन फाइनल में क्रोशियन अपोनेंट जो था उसे हार गया। उसने अलेज किया कि रेफरी ने फेवर किया था उनके अपोनेंट को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बहुत ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया फॉर विनिंग लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। ईसीबी यानी कि जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने कहा है जी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल बैक नहीं करेगा सऊदी स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टी20 लीग। वो कहते हैं जी इसमें 8 टीम्स कम्पीट करती हैं 4 सेपरेट वेन्यूज में टूर्नामेंट में, और जिसको जो है सपोर्ट करती है सऊदी नेशनल वेल्थ फंड का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। लेकिन उन्होंने कहा जी कि बिजी इंटरनेशनल कैलेंडर होने की वजह से और बहुत सारे जो एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज लीग दुनिया में है वो, और ख्याल ये करते हुए कि जो प्लेयर्स का वर्कलोड है बहुत बढ़ गया है, कोई स्कोप नहीं है कि सऊदी स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टी20 लीग चलाई जाए। और उन्होंने कहा ना तो इसका स्कोप है ना तो इस आइडिया को मैं जो है वो एंडोर्स करता हूं। ईसीबी कीन है टू प्रोटेक्ट इट्स ओन द 100, जिसने कभी रिसेंटली रेज किए थे 1.27 बिलियन लास्ट मंथ आफ्टर सेलिंग द फ्रेंचाइज स्टेक्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जिसके के अंदर कुछ आईपीएल के ओनर्स भी थे, आपको हमने बताया ही था। तो उन्होंने कहा जी कि आईपीएल जो है वो बेंचमार्क है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका यूएई जो है उनके अपने खुद के टी20 लीग्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो है उसने ये आइडिया को बैक किया है और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है क्रिकेट को बेनिफिट करेगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट मेसी। 37 ईयर्स के हो गए हैं फिर भी वह क्या गेम खेलते हैं, लेकिन अब वो मिस करेंगे साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस अगेंस्ट यूरोगोए एंड ब्राजील, क्योंकि उनका मसल का स्ट्रेन आ गया है। इन्होंने हेल्प किया था इंटर मायामी का 2-1 विन एट एटलांटा यूनाइटेड इन मेजर लीग सॉकर, लेकिन फिर उसके बाद इनको मसल डिसकम्फर्ट आया था जिसकी वजह से ही इज आउट ऑफ अर्जेंटीनियन स्क्वाड और ये यूएस में रहेंगे थोड़ा रिकवरी के लिए और इलाज के लिए। अर्जेंटीना जो है उसके पास इस वक्त 25 पॉइंट्स है आफ्टर 12 गेम्स और ये होस्ट अप करेंगे ब्राजील को ऑन मार्च 25th विदाउट फॉरवर्ड नेमर आल्सो, क्योंकि नेमर भी जो है वो इंजर्ड है, उसको मसल इंजरी है। तो जनाब ये हैं हमारी खबरें,
ये हैं हमारी खबरें और ये वैसी खबरें हैं जैसी हमारी टीम की खबरें। मुझे तो रात ऐसी तो
उफ ज़ियाद का तो बस
मुझे ये समझ नहीं आ रहा,
बाल खींच ले
आप सोच लें कि बाउंड्री वैसी छोटी है।
हाँ बहुत छोटी है,
बावजूद आप डायरेक्ट से बाहर
लग नहीं पा रहे, इनसे हिटिंग ही नहीं हो रही
और वो जवान दूसरी तरफ वाले ग्राउंड की भी 50 मीटर दूर।
पजनम के कद भी तो लंबे है ना,
कद लंबे।
हाँ ये छोटे हैं जरा बेचारे, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं टिडे टिडे हैं।
समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
इनसे नहीं लग रही, इनसे हिटिंग हो ही नहीं रही है। इनके ऊपर मुझे लग रहा है जैसे वो शुभ वाला वो जो पीर रही है उसने इनके वो शुभ शुभ वाले पीर रहे
तावीज आवीज हो गया,
कोई तावीज शावीज कोई दम शम कर दिया है। क्योंकि देखो ना वो बल्ला कैसे रख रहे हैं, ऐसे मतलब रोकते जा रहे हैं एज इफ के बड़ी कोई खतरनाक इमरान खान या वसीम अकरम या शोएब अख्तर की कोई बॉलिंग हो रही है वहां पे। ऐसी कोई मैं देख रही थी, मैं भी कुछ देख रही थी, कोई ऐसी खतरनाक उधर बॉलिंग नहीं हो रही थी
बिल्कुल।
हाँ, और ज़ियाद का तो मेरे बेटे का तो दिल नहीं हो रहा था कि वो अपने बाल किसी तरह नोच डाले कि ममा ये प्रोफेशनल ये प्लेयर्स हैं ये। मैंने कहा हाँ जी ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो कहते हैं इनको खेलना क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा जी पूछो जाके, तुम अगर पूछ सकते हो तो पूछो, उनसे खेला ही नहीं जा रहा उनका। मुझे लगता है ना बल्ला चल रहा है ना हाथ चल रहा है ना वो बल्ला बैठ रहा है, तुम देखो वो रख कैसे रहे हैं ग्राउंड पे।
मैं बैटिंग तो ज्यादा नहीं देखी,
हाँ।
वो जब तराई पढ़ के आया तो
नहीं हाइलाइट्स देखो,
हाइलाइट्स मैंने थोड़ी सी देखी हाँ, लेकिन रियल लाइफ जब मैं देख रहा था तो उस वक्त बैटिंग उनकी शुरू हो गई थी और जो छक्के पड़ रहे थे शाहीन शाह फरीदी साहब को
इतनी गंदी बॉलिंग।
अच्छा दूसरा एक और जो नया बॉलर आया मोहम्मद अली
अली, हाँ
मैं कहता हूँ भाईजान इससे अच्छा ना
गली का गली
कोई नाजमाबाद या कहीं और से गली से कोई लड़का उठा के ले जाएंगे ना तो वो इससे ज्यादा अच्छी बॉल करा
देगा।
और भाई का जो बॉल कराते जान निकलती है, पेड़ उसका देखें एथलीट है यार ये, इनके पेड़ कहाँ जा रहे हो। ये फास्ट बॉलर अपने आप को मीडियम फास्ट बॉलर
कह रहे हैं, फास्ट बॉलर इतना जो मोटा है
पता नहीं कहाँ से सिलेक्शन हो रही है, कौन सेलेक्ट कर रहा है इन लोगों को, इनका खुद का कैरियर भी तबाह कर रहे हैं और मुल्क का नाम भी जो है
डबो रहे हैं।
वो डबो रहे हैं आप उसको मरोल जो है ना वो एक 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 एनर्जी होनी चाहिए, आपने वो सब कुछ जो है
हाँ।
वो बर्बाद करती है
हाँ, हाँ,
तो
हाँ।
दुखी होता है भारत
बस वो यही बात है ना, वो फिर इसीलिए लोग मुड़ मुड़ के फिर वो इमरान खान की तरफ जाते हैं, उसके लोग काफी खिलाफ भी होते हैं। लेकिन जो टीम उसने तुम देखते हो ना क्या डिसिप्लिन था, तो वो देखो वो सुनो इनके लड़कों के जो किस्से हैं वो वसीम अकरम वगैरह के कि हम छुप छुप के कोशिश करते थे कि बर्गर खा लें, आता ही था और ऊपर से इमरान भाई आते थे कहते थे जी ये प्लेट लेके जाओ, बिल्कुल लेके जाओ। एक डिसिप्लिन तरीके से आपने टीम को चलाना होता है ना जी, और आपने एक खुद भी वो डिसिप्लिन शो करना होता है, तो ना तो आपकी टीम में वो डिसिप्लिन नजर आ रहा है ना कोई उधर वो जो बोर्ड में बैठे हुए हैं वो भी
सिस्टम सही नहीं
हाँ सत्तू पी के सो रहे हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल।
इसी सिस्टम से जो है
ठीक होगा, ये 75 ईयर्स तो हो गए हैं अब, और कितने और साल चाहिए खेल खेल के दुनिया सारी को आप हराते थे, उस वक्त सिस्टम नहीं था बना हुआ जिस वक्त आप दुनिया को हरा रहे थे, ये सिस्टम अचानक से खराब हो गया
है
अब बाकी के तीन तुम कह रहे हो जीत जाएंगे
उम्मीद, और इसके अलावा और क्या करेंगे,
खेला ही नहीं जा रहा उनसे तो बल्ला मुझे लग रहा है बल्ले का शायद वेट बहुत हो गया उसमें उन्होंने सरिया डाल दी, उनसे बल्ला ही नहीं उठाया जा रहा हाँ उठ ही नहीं रहा ना बल्ला ऐसे
नहीं,
करके उठ ही नहीं रहा,
कुछ नहीं हो रहा उनसे, कुछ भी नहीं हो रहा ना बॉल हो रही है ना बैटिंग हो रही है, कैच भी छोड़ रहे हैं। तो
शाहीन जैसा प्रीमियर जो आपका बॉलर है ऐसी गंदी बॉलिंग उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है यार इतनी गंदी बॉलिंग, यानी कि उसको कौन कह रहा है कि भाई पहचाना आपने गंदी बॉलिंग करनी है इस सीरीज में।
ये अभी वापस आते हैं मैं इनका सफा हिसाब के
बिल्कुल बिल्कुल
मैं जरा सा ये ट्रंप और उधर बिजी हूँ ना
बिजी
मुझे बहुत चल रही है
अच्छा अच्छा
उस पर भी मामला,
इसीलिए मैं कह रही थी तुम किधर हो
ना, नंबर बहुत जबरदस्त आ गए 2.6 इन्फ्लेशन रेट, तो बैंक ऑफ कनाडा भी जो है वो ग्रीन लाइट दिखा रहा है कि अब हम रेट शायद कट ना करें, उनकी भी हालत पतली हो रही है भाईजान। ये तो पहले सोचना था ना आपको टैक्स रिबेट की वजह से आपका जो है नीचे आ गया,
इन तरह के जो सियाने थे वो कह रहे थे ना कि 2.2 इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन 2.6 पे आ गई है,
बच अल्लाह आसानी करे
हाँ, हम तो कहते हैं इतने पहले लंबे उनको देने के बजाय हमको थोड़े से दे दिया करो, हम तो 4-4 महीने पहले ही हम प्रिडिक्शंस कर देते
हैं, हमें नहीं मिलेंगे पैसे
हमें नहीं देते नहीं,
इसके लिए आपको लॉटरी करनी पड़ेगी खुद ही लॉटरी खुद ही करनी पड़ेगी आपको,
पता नहीं कैसे एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं,
गलत एक्सपर्ट बिठा
वही तो
चले कोई बात नहीं। शाहजी बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू,
और इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहे
बिल्कुल,
कल आपसे मुलाकात
सही है,
बहुत शुक्रिया।
छुट्टी का कोई चांस नहीं है
अभी तो आपने की है यार, शुरू में फिर छुट्टी
अच्छा ठीक है चलो,
नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलने वाली आपको, आपके वैसे ही मैं कैलेंडर नोट हो रहा है
अच्छा जी
चले बहुत शुक्रिया,
ओके थैंक यू,
चले जनाब सामीन आपका बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इजाजत लेंगे आपसे, आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
ਕਦੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਟਦਾ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
भाई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह
647-290-3773 647-290-3773